लिव बेस्ट स्किल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। तो इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी यात्रा पर चलने का प्रयास करेंगे जो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को एटलीस्ट ट्रिगर करेगा। हम प्रयास करेंगे टू अटेन द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बाय सेल्फ अवेयरनेस। इसमें हम स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूटिव हेल्थ और मिस्टिसिज्म के माध्यम से जीवन के अलग अलग आयाम खोजने का प्रयास करेंगे। इसमें हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हम वास्तविक जीवन में कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। ये पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि हम और आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी जारी रख सकें। चलिए शुरू करते हैं।
जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं।
वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर और मनमोहक। जैसा कि आपके गीत से एक दोस्ती की खुशबू आ रही है और जैसा कि हमने डिसाइड किया था आज का हमारा जो टॉपिक दोस्ती होगा, तो दोस्ती के इस टॉपिक पे मैं लिव बेस्ट स्किल पॉडकास्ट पे आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।
खैर, मैं बहुत ज्यादा औपचारिक ना होते हुए ओके, मैं शुरुआत करना चाहूंगा वुडरो टी विल्सन के एक बहुत खूबसूरत कोट से, फ्रेंडशिप इज द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा इधर, वो ये रहेगा कि तेरे हिसाब से दोस्ती क्या है और ये कितनी जरूरी है?
जीवन को अकेले जिया जा सकता है। अगर हम अपने जीवन के पथ पर अकेले चल रहे हैं तो हमें कई सारी कठिनाइयों का अनुभव जरूर होगा। चाहे हम कितने भी प्रसिद्ध हों, चाहे कितने भी संघर्षशील हों, पर कठिनाइयों का अनुभव सभी को होगा। तो उस व्यक्ति को जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसे हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसके हर्ष में, उसके विषाद में या उसके विलाप में उसका साथ दे, और जिसके समक्ष वह अपने मन का कोई भी रहस्य गुप्त ना रहने दे। ऐसे मान लो जैसे वो अपने विश्वास की दीवार को खड़ा कर सकता है अपने दोस्त के भरोसे। और इसलिए मेरे हिसाब से सच्चे मित्र का होना या उसको तलाशना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये उसकी मन आवश्यकता है, मुझे लगता है कि दोस्ती की आवश्यकता है। अब जहां तक दोस्ती क्या है तो इसको शब्दों में तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है, क्योंकि इसको अगर हम कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश भी करें तो शायद वो एक जस्टिफिकेशन नहीं होगा दोस्ती के साथ।
शब्द कम पड़ जाएंगे।
हाँ बिल्कुल,
मुझे लगता है दोस्त ही सिर्फ वो एंटिटी है जो कि हमको एक इमोशनल सपोर्ट देता है। और वो जैसे वैसे तो हमको अपने दूसरे जो हमारे रिश्तेदार या बीवी सबसे मिलता है इमोशनल सपोर्ट, पर दोस्त से एक अलग तरह का एनर्जी हमको मिलता है। और जब हम थोड़े मुश्किल टाइम में होते हैं और कई बार ऐसी कुछ हमारी बातें होती हैं जो हम घर में भी डिस्कस नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे हम दोस्त के कंधे का सहारा लेते हैं और जस्ट उससे वो सिर्फ शेयर करने के बाद हमको काफी मतलब अच्छा लगता है। हमारे दोस्त जब हमको कुछ एनकरेज कर दें, अच्छा महसूस कराएं, तो फिर उसके बाद फिर एक अलग ही एनर्जी लेवल के साथ हम वापस ट्राइंग कर पाते हैं।
बिल्कुल सही बात है।
और इसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि देखो ह्यूमन बीइंग जो है ना, एक सोशल एनिमल तो है ही, और चलो सोसाइटी में तो हम बहुत लेयर्ड हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो एक पर्सनल सोशल कनेक्ट जो हमको मिलता है, और ये चीज जो है ना, ये टॉनिक की तरह मतलब हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हमको ना कुछ ही दवाई की जरूरत होती है, बट सिंपली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक अपनेपन की भावना जो हमको अपने खास दोस्तों से ही मिलती है। इस पे मुझे एक लाइन याद आ रही है, दोस्ती का लम्हा ऐसा होता है जो कभी तन्हा नहीं रहने देता। और ये जो लम्हा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी मतलब मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो एकदम से हम देखते हैं कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। कोई भी तनाव, चिंता और डिप्रेशन, वी गेट अ पर्पस तो मतलब फुलफिलमेंट वो भावना मिलती है। कई बार जाने अनजाने में, जैसे मान लो हम दोनों हैं तो हम कोई भी कर रहे हैं काम, तो कहीं ना हमारे बीच एक प्रतिस्पर्धा सी थी, बड़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन जिसको मैं कहूँगा, वो दोस्तों में होना स्वाभाविक भी है और एक अच्छी बात भी है। इससे क्या होता है कि हम अपने लिए एक चैलेंज भी मिलता है, चुनौती मिलती है, मुझे तुझसे मिलती है कई बार वो चुनौती, और उस चुनौती से मैं जब अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो एक मेरा जो बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ है वो बाहर आता है। कई बार तो खैर दोस्त टांग खिंचाई करते हैं, चलो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हमको दोस्तों से मिलता है और जो हमको अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने में काफी हेल्प करता है।
बिल्कुल,
जो हमारे जो पल हैं जो बिताए हुए और अनुभव जो हमने साझा की वो जो है एक ऐसी यादें बनाने का अवसर हमको प्रदान करते हैं, और जब हम कभी पीछे मुड़ के कभी याद भी करते हैं पलों को तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का स्रोत बनता है।
बिल्कुल, और कभी ऐसा होता है जैसे जो आपका एक ट्रू फ्रेंड है वो अगर आपको कोई चीज आपको बताए कि देखो आप ये ऐसा ठीक नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है उसका असर सबसे ज्यादा होता है हम पर। बहुत ही उसके पीछे एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है जो मेरी हेल्प करना चाह रहा है, और ये होता है कि हम फिर नेक्स्ट टाइम में उस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमने इस बात को दोहराना नहीं है, इसको फॉलो करना है जो बताई गई है। पर मेरे हिसाब से क्या लगता है तुम्हें, जैसे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फ्रेंडशिप की, रियल फ्रेंड्स होते हैं, मतलब वैसे तो कई तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या उसका इंग्रेडिएंट होना चाहिए अच्छी दोस्ती का?
वो है, मुझे लगता है सबसे पहले तो ट्रस्ट, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, और फिर उसके साथ साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कई बार ऐसा होता है ना, दिल की बातें अपने दिल में ही रख देते हैं और कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं हो सकता है मुझे कोई गिला हो अपने दोस्त से, कोई गिला शिकवा हो, लेकिन मुझे पता नहीं था पूरी बात का, लेकिन जब उसने मेरे को कम्युनिकेट कर दिया अच्छी तरह से तब मैं पूरा समझ आता हूँ कि अच्छा अच्छा ये बात थी, तो फिर वो मेरी दोस्ती का एक काफी अलग ही रंग बन के आता है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और, वो ये कि भाई जैसे मान लीजिए दूसरे पक्ष का सही आंकलन करना और समझना कि भाई इसने ऐसा क्यों किया होगा और ये ऐसा क्यों कह रहा है, और एक अच्छा जो श्रोता बन करके उसकी बात को सुनना, तो मुझे लगता है ये दोस्ती का सबसे जो इम्पोर्टेंट गुण है ये चीज है।
अब जैसे तुमने बोला कि ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट का कोई पैरामीटर है क्या? क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है ये कि ट्रस्ट कैसे ट्रस्ट करें, और ये एक मतलब फॉर एवर आपको एक उसको बनाए रखना होता है, अपने एक होता है ना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ ना जिसके साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं ना, चाहे वो मेरा ट्रू फ्रेंड है या कोई प्रोफेशनल है जिसके साथ मेरे जॉब में मैं दिन में 5-7-8 आवर्स बिताता हूँ, तो मेरे साथ भी होता है, पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, तो उनकी जब क्वालिटीज और उनसे सुनते हैं हम या उनसे ही सुनते हैं, तो कई बार होता नहीं है कि यार उनसे थोड़ी चिढ़ टाइप की या होता है?
बिल्कुल बिल्कुल
होता है। तो इस चीज पे फिर बाद में मैं जब सोचता हूँ मेरे को यार मैं क्यों उससे चिढ़ रहा हूँ, या कोई दूसरा अगर उसकी प्रेज करता तो मैं उसको काट रहा हूँ, मैं बोलूँ यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ, तो इस चीज से कैसे बाहर आया जाए, मतलब काफी चैलेंजिंग का होता है।
मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ना दोस्ती गाढ़ी होती है, तो हम जो है समझ जाते हैं कि भाई ये मतलब ये तो स्वाभाविक ही है ये होना, ये ईर्ष्या और ये मतलब चिढ़ाना ये तो चलो एक पार्ट है, लेकिन एक बिगर पिक्चर में अगर हम देखें तो जो बाकी चीजें हैं वो बहुत, उनका अंश बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस।
एट लास्ट हम इन चीजों को इग्नोर करके उसके टफ टाइम में सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उसकी तरफ, और वो चीज ज्यादा मैटर करती है।
जैसे मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाए किसी के साथ, मान लो हमारी जो दोस्त है उसके साथ हमको मान लो कोई बात उसकी पसंद नहीं आई या कोई टकराव की स्थिति पैदा हो गई, तो इसमें एक ना ईमानदारी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी, ताकि मैं अपफ्रंट आपको बता सकूं कि भाई मुझे ये लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है, किसी भी मुद्दे के बारे में खुलकर, सबसे बड़ा सम्मान पूर्वक साथ में मिलकर समाधान खोजने के लिए अगर हम लगे, एक बेटर फ्रेंडशिप उसके बाद बन के निकलती।
चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, क्या है मुश्किलें क्या है आपके हिसाब से?
या मिसअंडरस्टैंडिंग, या पे हमको ऐसा लगता है यार मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, वो चीजों को ओवरकम करने के लिए हमको एक एटीट्यूड, एक विजडम बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर वो नहीं है तो फिर हम कई बार हमारी दोस्तियां टूट भी सकती हैं, बड़ा फ्रेजाइल भी होती हैं ये दोस्तियां, ऐसी बात नहीं है कि बहुत से पड़ाव पार करने के बाद ही क्वालिफाई होती है वो जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बड़ी अच्छी बात, चलो मुझे याद आ गई इसके साथ ही साथ, क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे सामने, इंडियन सिनेमा में सलीम और जावेद की दोस्ती जो है काफी साल तक चली, अभी भी उनका जो रिलेशन है वो काफी एक दूसरे के लिए सम्मानजनक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सीफली कि अभी वो फ्रेंड है। वो फ्रेंड इसलिए नहीं है, मैंने जावेद साहब के एक इंटरव्यू में ही सुना था, उन्होंने कहा पहले हम दिन की शुरुआत से लेके रात तक हम साथ रहा करते थे, तो मेरे माथे पर शिकन भी आती थी तो सलीम साहब को पता चल जाता था कि ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे हमको सक्सेस मिल गया वैसे वैसे हमारे थोड़े सर्कल भी चेंज हो गए और हम एक दूसरे के साथ उतना समय नहीं बिता पाते थे। इस वजह से क्या हुआ कि हम हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, और मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल सच है बात, जैसे जैसे हम या तो अपने सोशल स्टेटस की वजह से या फिर जॉब या किसी दूसरी वजह से हम जो है अपने फ्रेंड के साथ जब टच में नहीं रह पाते, तो धीरे धीरे हमको ये नहीं पता चलता उनके खुशी, उनके गम, उनकी तकलीफें, वो चीजें हम महसूस नहीं कर पाते, हमारे बीच स्वाभाविक ही है कि वो दूरियां बढ़ जाती हैं। तो एक तो ये है, मुझे लगता है एक तरीका जो ये है कि एक बार हम टच में जरूर, ज्यादा ना सही तो फोर्टनाइटली या मंथली एक बार जरूर, मतलब अच्छी तरह से खोज खबर लें दोस्तों की। इससे जो है हमको भी खुद को भी स्पेशल फील होता है जब हमको कोई फोन आता है या हम किसी को फोन करते हैं।
हाँ ये बहुत बढ़िया, जैसे अभी तुमने बोला कि जावेद अख्तर और सुनील वाला एग्जांपल दिया, इसमें पता क्या होता है, मुझे लगता है कि इसमें ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हु विल ट्राई इट फर्स्ट, मतलब जो एक गैप बढ़ गया है उसको पहले कौन ट्राई करेगा, वो ईगो आ जाता है ना वर्ड, वो ईगो को आई गो में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है,
आई गो
आई गो फर्स्ट, पर वो ईगो जो आई गो से पहले हावी रहता है। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मेरे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, अब उनमें क्या हो, दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों जॉब में, अब मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी वाइफ उसको 15 दिन में कॉल करती है,
अच्छा,
तो पिछले 2-3 बार में उसने उसको 3-4 बार कॉल कर दिया,
अच्छा,
और उसकी तरफ से कॉल आता नहीं है। अब वो मेरे को कहती है देखो वो तो कॉल करती नहीं है, तो मैं उसको आगे बोलता हूँ तो तेरे को यह पड़ेगी। तो ये चीज हो जाती है कि आई हैव ट्राइड थ्राइस फोर टाइम्स एंड शी इज इग्नोरिंग, अब वो सकता है कि उसकी सिचुएशन कुछ और हो, आ ही जाता है ना कि मैंने 2-3 बार कर लिया एंड शी इज लीस्ट बॉदर्ड, कम्युनिकेशन गैप या उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी।
इसमें हमको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे हम लोग अब हम हर फैमिली का अपना एक इकोसिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटीज भी अलग होती है, जैसे जैसे लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, तो ये जो अंतर होता है प्राथमिकता में ये दोस्तियों में चुनौतियां पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक दोस्त है जो कि अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, और जो दूसरा है वो किसी और चीज को, जैसे मान लो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को प्राथमिकता देता है, लेकिन उसके दूसरे के लिए उतनी वैल्यू नहीं, या हो सकता है कोई बंदा अपनी फैमिली को ही बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हो। अब इसमें क्या है कि हमको ये भी रिस्पेक्ट करना है कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो उसके लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि कुछ और चीज में आई गो ही काम आएगा हमको बात, क्योंकि अगर हम ईगो को ले आएंगे बीच में तो वो वीक ही करेगी फ्रेंडशिप। और उसके बाद जो है कई बार क्या होता है एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि कई बार ना कहीं उनको मतलब आदत भी होती है, या फिर कोई जैसे छोटा सा बहाना कुछ बता दिया ये, लेकिन बाद में पता चला कि यार वो बहाना था या फिर वो झूठ बोला था मुझसे, यानी कि मेरा भरोसा टूटा, यानी कि मतलब मुझे विश्वासघात पैदा लगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये दोस्ती को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और जब एक बार ये विश्वास टूट जाता है तो इसका फिर हील होना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल।
और ज्यादातर ऐसा होता है जो बंदा मान लो सक्सीड करता जा रहा है उसको लगता है कि फिर लगता है कि यार ठीक है व्हाई शुड आई
बॉदर,
आई शुड बॉदर, और मुझे लगता है जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज है।
हाँ
फ्रेंडशिप में टाइम इन्वेस्टमेंट का लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसी को, अब जैसे हम लोग भी अभी कनेक्ट हुए हैं तो हम काफी एक्साइटेड रहे 2-3 दिन से, पर ये चलो एक जरिया तो है ना हमारे लिए।
ये एक्चुअली बस बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब एक कॉम, जैसे कुछ लोग पता मिलते हैं ना उनका होता है, उनको होता है कि हम साथ में मिलेंगे और फिर हम बैठ के हम जो है ड्रिंक करेंगे, तो उसी ड्रिंक की लालच में वो उनकी फ्रीक्वेंसी काफी होती है एक दूसरे की से मिलने की। तो यानी कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेस्ट फ्रेंडशिप दे कम विद इक्वल फुटिंग, यानी कि मतलब एक समानता की कोई ऐसी चीज, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ग्रेविटेट करे उस तरफ, और फिर वो तो आप प्रैक्टिस करते हो लेकिन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको एक अच्छी दोस्ती मिली।
मुझे लगता है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैसे अगर आपके कॉमन टेस्ट है ना तो वो फ्रेंडशिप ऑटोमेटिकली एक मतलब कनेक्ट बॉन्ड बना देती है।
हाँ हाँ बिल्कुल।
अब जैसे प्लस वन में मैं पढ़ता था तो मैं बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो से आया था, मैं हिंदी मीडियम से आया था, तो जिस स्कूल में गया मैं वहां पर थोड़े अच्छे स्कूलों के पढ़े लिखे दोस्त थे, वो नेचुरली उनका अपना ही ग्रुप होगा, बट जब उनका म्यूजिक टेस्ट मेरे म्यूजिक टेस्ट से उसकी जो वेवलेंथ मैच हुई तो नेचुरली एक बॉन्ड बन गया। तो सेम टेस्ट और सेम टाइप की फॉन्ट्स होना बड़ा इम्पोर्टेंट है।
मतलब ये कई बार ना हमको ये कल्टीवेट भी करने पड़ते, कई बार ऐसा होता है हमारे नहीं होते, लेकिन अगर हम यानी कि मेरे कहने का मतलब है इसमें एफर्ट हमको डालना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, बहुत से मुझे मिलते हैं लोग ऐसे कहते हैं मेरे तो दोस्त ही नहीं बनते, या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो मेरे कॉलेज टाइम के या स्कूल टाइम के जो भी हैं उनसे तो मैं टच में ही नहीं हूँ, क्योंकि आपका कोई कॉमन बिंदु ही नहीं है जिससे आप जो है उनको पिंग कर सकें। यानी कि जो आपकी जो साझा रुचियां हैं वो जो है मतलब उससे आपके अनुभव बनते हैं, और इट कैन बी लाइक प्लेइंग, या फिर जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई ईटिंग जॉइंट्स, चलो रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं चल के, तो आपको पता है यार ये भी है, इसको भी इंटरेस्ट है, लेकिन वही चीज़ आपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ में करो। अच्छा, इसमें एक बात और बड़ी मजेदार है, वो है इक्वल फुटिंग, कि समानता की पारस्परिक भावना। यानी कि यहाँ पे कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जहाँ ना तो व्यक्ति के पास दूसरे की तुलना में अधिक पावर या राइट होता है और ना ही कम, तो विच मीन्स दिस अलाउज फॉर अ मोर रिलैक्स्ड एंड कैजुअल डायनेमिक। यहाँ पे दोनों पक्ष अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में बिल्कुल सहज महसूस करते हैं।
वही होता है, कनेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारा MSc फिजिक्स किया था मैंने 99 में, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उस टाइम है कोई 15-16 या 17-18 लोग होंगे, उनमें से 5-6 के साथ मेरी फ्रिक्वेंटली थोड़ी बात होती रहती है।
अच्छा।
तो उनमें से सिर्फ एक बंदा है जो मेरे को बोलता है हाँ भाई गाने गुने चल रहे हैं कि नहीं।
अच्छा।
बाकी जो 5 जो उनको शायद अभी पता भी नहीं होगा कि मैं गाने गुने गाता हूँ या मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो होता है जैसे उसको पता है मेरी ये क्वालिटी है ना, तो अगर वो कभी मेरे को मिलेगा भी कहीं तो सबसे पहले हम मतलब बड़े नेचुरल तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे आपस।
तो ये जो है क्या ना, इससे क्या हुआ जो आपने बात अभी कही है, एक एक व्यक्तिगत संबंध उस व्यक्ति विशेष से डेवलप हो जाता है, और जब हम मतलब इट वर्क्स ऑन क्रिएटिंग अ डीपर लेवल ऑफ इंटीमेसी देन इन एनी अदर टाइप ऑफ रिलेशन, और वो हमारे को दिल में कहीं ना कहीं टच करती है, और जब वो टच करती है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको डेलिबरेट एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसे बैठे बैठे ना, अब सामने वाले व्यक्ति क्यों सोचेगा मेरे बारे में जब मैं ही उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो वैसे ना ह्यूमन बीइंग एक दरअसल एक बहुत ही एक सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्टिक प्राणी है। मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस आर टेम्पोरेरी और सिचुएशनल, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रू फ्रेंडशिप है ना, जो कहते हैं कि भाई फ्रेंडशिप फॉर अ लाइफ टाइम, तो ये जो है इसी जो दिल को छूने की जो भावना की बात हमने पहले की उससे गुजरती हुई जाती है, और विच मीन्स दिस मतलब लॉन्जिविटी ऑफ फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड ओवर एंड ओवर विद टाइम। तो बाद में हम एक इतने रिलैक्स्ड और इंटीमेट डायनामिक में पहुंच जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और मतलब हमको लगता है कि यार हमारा बॉन्ड है, लेकिन दरअसल वो बॉन्ड नहीं है, वो एक जो है हमारा सामने वाले व्यक्ति को दिया गया एक रोब है कि भाई मैं क्योंकि उसकी बात सुनता हूँ, एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप के अंदर।
बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कभी मान लो आप बीमार पड़ जाएं तो आपको एकदम से उस मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जो आपको एकदम से ठीक कर दे।
हाँ,
वैसे कई बार होता है जैसे 10-15 दिन निकल गए, फिर एकदम से बंदे को माइंड में आता है कि यार अब कॉल करना है, शायद वो भी कहीं बिजी होगा, चलो कोई नहीं मैं कर लेता हूँ।
हाँ।
उसके बाद जब कनेक्ट होते हैं तो फिर वो बिल्कुल एक मतलब जो संतुष्टि मिलती है ना वो बड़ी जरूरी है। तो अभी मैं अचानक से अभी बैठे बैठे ही मैं लगा सर्च करने, मैंने कहा दोस्ती के ऊपर कोई शेर ढूंढता हूँ।
अच्छा।
तो शेर ढूंढा नहीं मैंने, अचानक अभी लिख दिया मेरे को, बस ऐसी बन गई 2 लाइनें।
क्या बात है।
तो मैं वो अभी बस ऐसी 2 लाइनें बना दी, मैंने कहा चलो सुना देता हूँ।
हाँ।
वो शेर है कि जब अचानक पड़ जाए कोई मुसीबत, जब अचानक पड़ जाए कोई मुसीबत तो यार याद आता है, तो यार याद आता है, जब करना हो खुशी का इजहार, जब करना हो खुशी का इजहार तो यार याद आता है। वैसे तो है हजारों फेसबुक फ्रेंड्स, 3,000 के आसपास है, वैसे तो है हजारों फेसबुक फ्रेंड्स, जरूरत पड़ने पर मैं हूं ना जो कहे, जरूरत पड़ने पर मैं हूं ना जो कहे वो यार याद आता है।
क्या बात है, बहुत सही,
बस ऐसे ही बना दिया थोड़ा सा।
नहीं नहीं बहुत अच्छा बना। ये तो वो जैसे ये कही ना बात फेसबुक वाली बात से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आजकल तो खैर बहुत हो गया है कॉमन, ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों की, और जिस तरह से वो मतलब अवतरित होती हैं उसी तरह से वो गायब भी हो जाती हैं, तो उनका कोई सिर पैर ज्यादा होता नहीं है।
बिल्कुल
तो मतलब मैं कहूंगा कि कैजुअल फ्रेंडशिप भी कहूंगा मैं इसको।
जी
और जो क्लोज मतलब क्लोज फ्रेंडशिप्स में भी देखो श्रेणियां ये हैं कि आप एक तो वो आपके बचपन के दोस्त, फिर यानी कि फिर या फिर कॉलेज के कह लो और पढ़ाई के, फिर दूसरे वो एक कुलीग, कुलीग में भी आपके अच्छे फ्रेंड्स मिल के आ सकते
बिल्कुल
हैं। हाँ, लेकिन बाद में ऐसे दोस्ती होना थोड़ा मुश्किल है कि भाई हम ऐसे ही किसी चर्च की गाड़ी हमारी दोस्ती हो जाए, तो वो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो लोग हम बिजी बहुत हैं आजकल, और साथ में जो है एक जो हमारी जो चैलेंज है वो ये है कि जब हम अपनी हॉबीज भी हमारी ज्यादा नहीं होती वैसे मोस्टली लोगों की, तो क्योंकि जैसे ही हम हॉबी में किसी में जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो एकदम से हमारे को सेम पिच का वो आ जाता है कि अरे वाह तुम भी, तो फिर हम उसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचने लग पड़ते हैं।
हाँ, ये बढ़िया बात है। जैसे वर्सेटाइल बड़ा होना बड़ा टफ काम है। जैसे मान लो कोई टीचिंग ही करता है, और मोस्टली वो टीचिंग ही करता है, अचानक से किसी को पता लगा यार वो तो कविताएं भी लिखता है या सिंगिंग भी करता है, तो बंदा उसको एक स्पेशल तरह से ट्रीट करने लग
ट्रीट
जाता
करता
है।
है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो पर ये होता बड़ा कम है, जैसे तुमने बोला कि ये वर्सेटिलिटी बड़ा टफ काम है, मतलब किसी किसी में होती है ये।
और फिर ऊपर से जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भी जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा हाँ, इसमें जैसे मुझे एक पॉइंट अब याद आया, पहले याद आया था जब हम बात कर रहे थे कि चैलेंजेस की, तो कई बार क्या होता है ना, मुझे अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि उदाहरण के लिए मुझे तो है एक्सपेक्टेशन, लेकिन सामने वाला दोस्त कोई ऐसा कुछ नहीं है ऑब्लिगेशन की वो उसने उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, तो उस केस में बहुत गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और मैं सोचता हूँ कि भाई जब भी मुझे मान लीजिए किसी भी चीज़ की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए तो मोस्ट कॉमन चीज गाड़ी होती है, मुझे गाड़ी की जरूरत पर आवश्यकता होगी तो मैं जो है इससे ले ही लूंगा और ये तो मुझे मना ही करेगा ही। लेकिन अब ये नहीं पता कि उसके परिवेश कैसा है, उसके लिए क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या वो देगा देना चाहेगा या नहीं, तो हम कई बार ये चीज अपने दिमाग में ना मतलब ज्यादा इससे सोचते नहीं, और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है इसने नहीं दी तो हम उस पे उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा रिलेशन मतलब खटास आती है और सामने वाले बंदे को भी हो सकता है थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगे कि यार इसने ऐसे कैसे मेसेज मांग लिया, टास्क कैसे मांग लिया, तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फिर इवेंचुअली फिर ऐसी दोस्ती हमारी खत्म हो जाती है। और
वही है, बिल्कुल वही है ना। आपने 3-4 बार, 3-4-5 बार किसी की हेल्प की, अब पांचवी छठी छठी बार अब आप इवेंचुअली कर ही नहीं पा रहे हो, या आपकी फैमिली में ही ऐसी कोई सिचुएशन है, तो बंदा उन सभी बातों को बोल के उस चीज पे फोकस कर लेता है, यार इससे तो मेरी हेल्प नहीं।
और मुझे लगता है कि वो खैर खैर इतनी सिचुएशन से मुझे याद आया कि भाई जैसे मान लो हमको अपने दोस्त के प्रति ऐसा भाव हो जाए कि यार कौन रोम है नहीं क्या,
क्या हो।
और पता क्या, जितना दोस्त हमको प्लीज करते हैं ना उस सबसे ज्यादा हमको हर्ट भी दोस्त दोस्ती से ही होती है, कि अगर मान लीजिए मेरा दिल किसी ने दुखाया तो किसी और ने दुखाया था तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त ने दुखाया तो वो कहते हैं ना कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा। तो यहाँ पे ये भी एक फेज है, ये हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये छोटा सा फेज होता है और इसमें दोस्ती में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं और बीच में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक विलिंगनेस टू वर्क, वो जो है इससे हम बड़ी आसानी से निकल सकते हैं इन सब चीजों से।
बिल्कुल बिल्कुल
लेकिन ये जो हमारा डिस्कशन जैसे ये ऐसा शेप ले लिया, मैंने सोचा भी नहीं था ये ऐसा शेप बन जाएगा, तो इससे एक चीज मेरे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये ठीक है ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब क्या जो ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप फॉर लाइफ, इसका क्या मंत्रा है, कैसे हम जो है अपनी स्वस्थ दोस्ती कैसे बनाए रखें जो कि मतलब चिरकाल तक चलती रहे।
इसका जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है परस्पर विश्वास। एक दूसरे पर विश्वास अगर आप रखेंगे, और अगर आपको मान लो उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि उसने कोई आपको मतलब कोई मतलब टाइमली उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो समझना पड़ेगा कि शायद मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचना पड़ेगा। ऐसा तो जो नेगेटिविटी होती है ना ज्यादा हैवी हो जाती है हम पे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव विद द पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो नेगेटिव जरा हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है। हम मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट को कम सोच के नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर अगर आपको पता है कि नहीं यार हमारी फ्रेंडशिप बहुत ट्रू है और इतने सालों से ट्रू रही है, तो फिर वो हमेशा के लिए भी ट्रू रह सकती है। बस उसमें वही है, ईगो को ईगो करो और अपने फेथ को आप कायम रखो, और सोचो कि जब आप उसकी रिस्पॉन्स को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं उसको उस तो सोचो कि यार उसकी दूसरी साइड के बारे में सोचो भी, यार क्यों ऐसा हो रहा होगा, लेट मी कनेक्ट, लेट मी ट्राई टू मतलब कनेक्ट विद द फ्रेंड, एंड तब शायद मेरे को लगता है वही हो गया, म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल इंडक्शन होता है एक फिजिक्स का वर्ड ना, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए, वो जब तक रहेगा तब तक। अब जैसे उसमें हम पढ़ते हैं कि एक मैग्नेट के पास अगर आप किसी दूसरे मैग्नेट को भी रख दोगे, बेशक वो टच भी नहीं हो रहेंगे, इवन देन इट विल अट्रैक्ट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ा जरूरी लाइफ में। तो
जो इस बात से मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे कि जैसे मान लीजिए ये हर कोई ये चाहता है कि मेरा कोई एक अच्छा दोस्त हो, लेकिन उस दोस्त को होने के लिए ये बात भी तो हमको, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी का अच्छा दोस्त बने पहले, तभी तो वो हमारा अच्छा दोस्त बनेगा। यानी कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे जो मुझे लगता है फंडामेंटल बात है कि जो लंबे समय तक जो चलने वाली दोस्ती होती है ना, इसको बनाए रखने में आपको काफी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं हो जाता ये ओवरनाइट कि भाई आप हम अच्छे दोस्त हो गए। आपका निवेश होता है उस रिलेशन के अंदर, और फिर यू हैव टू शो इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, अपने मित्र के जीवन में उनके अनुभवों, रुचियों और लक्ष्यों के बारे में पूछकर हम एक वास्तविक रूप में रुचि दिखाते हैं। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि जब वो बता रहा है तो हम वी नीड टू बी देयर। आजकल मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम दोस्त भी जब मिलते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो मोबाइल पे जो है ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, तो फिर आप कई बार थका सा महसूस करते हो कि यार अगर ऐसा था तो मुझे मतलब आने की जरूरत ही क्या यहाँ पर।
नहीं, फिर ऐसे में पता क्या होता है, ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप पहली बार मिल रहे हैं, दोस्त का आपको लगा कि रिस्पॉन्स फीका है, आपने उसको ट्राई भी किया कि छोड़ यार क्या है ये मोबाइल वगैरह, तो उसमें गुस्सा पड़ा है, पर फिर भी बोल रहा नहीं यार इन्वेस्टमेंट कॉल आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो उसका मतलब फिर उसका रिएक्शन आपको मतलब बार बार तो आप उसको प्लीज करते नहीं रहोगे ना, धीरे धीरे फिर आपको रियलाइज होगा कि यार उसकी प्रायोरिटीज कहीं और है। तो ये पैमाना जो सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रायोरिटीज का है,
प्रायोरिटीज।
कि उसकी जो सबसे प्रायोरिटी है शायद उसको अपने प्रोफेशन में या फैमिली लाइफ में कुछ ज्यादा, या तो उसमें फंसा पड़ा है या आपकी बात को, अब वो मिलने अगर आपसे आया है ना और आप उसके साथ कुछ बता रहे हैं तो उसका कंसर्न अगर कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी आप में नहीं है।
हाँ चलो ये तो मैंने माना कि वो आया है, ये तो इस बात के लिए तो चलो उसको एक काफी एक मतलब विलिंगनेस तो है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है साथ ही साथ हम उसको सीधा जज भी नहीं कर सकते कि भाई हो सकता है वाकई उसकी परिस्थिति काफी विकट हो
हाँ
जो कि हम
बिल्कुल,
समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। और मतलब लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, लेकिन फिर उसका जो पैटर्न है वो भी देखना है, एक बार दो बार तीन बार,
हाँ वो इम्पोर्टेंट है।
वो उससे फिर हमको थोड़ा पता चल जाएगा। लेकिन हाँ ये बात तो सच बिल्कुल सच है कि हमको वी नीड टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव, जब हमारा कोई मित्र किसी कठिन समय से गुजर रहा हो तो
हाँ
हमको बहुत ही ज्यादा उसको समर्थन और प्रोत्साहन दिखाना है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हमको ना कुछ ऐसी प्लान साथ में बनाने चाहिए कि जैसे मान लीजिए कुछ फन एक्टिविटीज, तो वहां पे कोई मजेदार चीज अगर हम साथ में करते हैं ना, तो पिकनिक पे चले जाएं जैसे, तो उस टाइम पे भी वो काफी चीजें जो है हम समझ पाते हैं कि भाई ऐसा इसलिए हुआ था, कोई सैर सपाटा या कोई छोटी मोटी यात्राएं अगर हम नियमित रूप से साथ में प्लान करते रहे तो बहुत हेल्प मिलता है।
बिल्कुल, पर ये तभी फिजिबल है जब आप उसके लिए एक टाइम फ्रेम बना दें। अगर आप ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है करेंगे होगा चलो देखते हैं, तो
नहीं, फिर वो
मैंने
सारी
देखा
बातें,
कि तो साल भी निकल जाते हैं ऐसे।
हाँ अरे साल क्या पूरी जिंदगी, कई दर्शकों को मैं निकलते में देखा है इस तरह से अपनी जिंदगी में।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक
अच्छा
फ्रेंड है, वो क्लास 1 में जब मैंने एडमिशन ली थी तब से मेरा फ्रेंड है, मतलब ही इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, और वो यही मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो कभी मेरे को 2 2 साल नहीं मिलता हो, और कभी गाड़ी में आमना सामना हो जाए तो वो मतलब अगर ट्रैफिक भी नहीं होगा रोड पे तो वो हॉर्न बजाता और निकल लेता है।
अच्छा अच्छा अच्छा
तो फिर समझना पड़ता है कि ठीक है उसकी शायद लाइफ स्टाइल ही ऐसा, या उसने अपनी लाइफ को ऐसे ही मतलब उसका टेक्सचर ही ऐसा बना दिया लाइफ का ना, कि उसको लगता है कि ठीक है इतना ही काफी है।
अच्छा
हाँ तो फिर उस हिसाब से मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपका दोस्त कितना पुराना है। पहले मैं सोचता था ना कि जो बहुत पुराने दोस्त होते हैं वो ही यार ट्रू फ्रेंड होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
सही बात
मैटर ये करता है कि आप अब हम दोनों देखो बीएससी में मिले हैं, तो बीएससी तक तो आपकी लाइफ का कितना फेज हो जाता है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
20 साल
बिल्कुल
निकल चुके होते हैं, उसके बाद से हम बने हैं दोस्त। तो ये मैटर नहीं करता कि कितनी पुरानी दोस्ती है, ये
बिल्कुल
मैटर करता है कि कितनी गाढ़ी दोस्ती।
हाँ, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है, एक तो हमारी इसमें राइटिंग के अंदर हमारी रुचि, लेखन जो हमें, मुझे याद है हमारा लेटर राइटिंग से वो ट्रिगर हुआ था
हाँ
काफी, और उससे भी पहले खैर म्यूजिक से तो बहुत पहले से हमारा वो हो चुका था, लेकिन अभी अभी क्या कहते हैं पिछले 2-3 सालों में हमने काफी एक्सप्लोर किया म्यूजिक का फर्दर, और मुझे जैसे मैं तैयारी भी कर रहा था तो मुझे पूरा अपना वो प्लेलिस्ट याद आ गया जिसमें कि हमने काफी सारे, मुझे लगता है दर्जन भर गाने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती वाले थीम पर ही हमने वो तैयार किए थे, और वो भी एक काफी एक मतलब, और इसमें मुझे लगता है कि म्यूजिक के अंदर ना इमोशन होता है, तैरता है, तो इसलिए भी वो होता है। और जैसे वो जो पहले बात की वो जो गुजर बरस जाते हैं कुछ लोग, हम तो रस्ते तो हैं उनको हमारे दोस्त, लेकिन जो तो उसके लिए मुझे कोट याद आ रहा है, एक वॉल्टर विंचर का एक कोट है, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। तो यहाँ कई बार उल्टा होता है कि द पीपल हु विल थिंक दैट दे आर आवर फ्रेंड दे वुड जस्ट वॉक आउट एंड वी सी द रेस्ट ऑफ द क्राउड।
वही है, मतलब बिगेस्ट चैलेंज यही है कि मतलब आपका ट्रू फ्रेंड कौन है, सच्चा परम मित्र कौन है। तो उसको मुझे तो लगता है वही है जो आपकी संकट की घड़ी में ढाल बनकर खड़ा रहे आपके लिए।
संकट की घड़ी में भी रहे, और उस तक पहुंचने के लिए हम जो है इतना अपना मतलब टाइम का निवेश कर चुके हो उसके साथ कि कुछ चीजें ऑब्वियस ही हो कि भाई वो तो है ही, तो मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा ना वो एक साधारण दिन में कि भाई मैं जो है अपने दोस्त की सारी बातें समझ जाऊंगा, तो इसमें मुझे टाइम लगा है ना, जिस तरह से बीज अंकुरित होता है उसी तरह से ये दोस्ती का पौधा इतना बड़ा हुआ है, और फिर कुछ चीजें इतनी सहज हो गई, इतनी सहज हो गई है। ट्रू फ्रेंडशिप इज वेन यू वॉक इन टू योर फ्रेंड हाउस एंड योर वाईफाई कनेक्ट ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल जब मैं जय और वीरू की दिख रहा था शोले मूवी के जो कैरेक्टर थे, तो एक फील गुड फैक्टर अंदर आता है, पता होता है कि ये दो बंदे ऐसे हैं हु आर गोइंग टू बैक ईच अदर, चाहे जो मर्जी हो जाए ये जो है साथ ही दिखेंगे, साथ ही लड़ेंगे भिड़ेंगे जो कुछ भी करेंगे साथ ही करेंगे, कैरेक्टराइजेशन को देख करके ही एक रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑब्वियस। तो ऐसे ऐसे जो है रियल लाइफ में भी हुए हैं लोग, एक हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों तो मुझे पता चला जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनका एक की एडवाइजर था बायार्ड रस्टिन, उनकी भी दोस्ती बहुत ही बेमिसाल थी, और दो अमेरिका के अंदर जजेस हुए हैं, एक फीमेल है एक मेल, रूथ बैडर गिंसबर्ग और एंटोनिन स्कैलिया। इनका सबसे जो इंटरेस्टिंग है इनकी दोस्ती में वो है कि इनके वैचारिक मतभेद, अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी इन दोनों अमेरिकी दी सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, इनके बीच बहुत ही घनिष्ठता थी और जो बहुत दशकों तक चली, और अब ये नहीं है ये तो पुराना हिस्ट्री की बात है, और ये एक ही साथ जाते थे शो प्लेज ओपेरा वगैरह सब देखने एक साथ जाते थे, और अभी के टाइम में अभी जो ओपेरा विनफ्रे है जो मीडिया मोगुल है और एक और है गेल किंग, ये भी जो है पिछले कई दशकों से जब जब ये यंग थे युवा पत्रकार थे और अब तो ये बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस बन गए बाद में, तब से लेकर इनकी दोस्ती मतलब बाकी सब चीजें बदली लेकिन इनकी दोस्ती, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सीरीज है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के अंदर तीन कैरेक्टर्स हैं, एक तो हैरी पॉटर, एक रॉन वीजली और एक हरमियोन ग्रेंगर, ये तीन दोस्तों की तिकड़ी, बड़ा ही मजा आता है इनको जब ये फाइट करते हैं और एक मुश्किल सिचुएशंस में से बहुत ही रोमांच और चुनौतियों के बीच में से जब निकलते हैं एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कोई भी सिचुएशन हो जाए लेकिन ये दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, ये तो चलो फिल्मी किरदार थे लेकिन मैं सच रियल लाइफ में नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, ओमपुरी का तो सर्वास हो गया, ये बहुत ही दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं, ये रियल लाइफ के बेस्ट बडीज हैं थे, इनका भी एक दूसरे का इन्होंने ऐसे ऐसे ऑड टाइम पे साथ दिया है और इनका बहुत ही डीप बॉन्ड है, और देखा कितनी मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है इन दोनों को एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे की एक्टिंग की क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं तारीफ भी करते हैं, इन दोनों को देख के मुझे फीलिंग आती है कि जैसे कि बने एक दूसरे के,
ये भी दोनों कम्पिटिटर्स मतलब एक ही
बिल्कुल
तरह की जो पहले मूवीज होती थी ना वो
हाँ,
ऑर्थोडॉक्स या पॉपुलर सिनेमा से हट के मूवीज जो होती थी।
तो मतलब इतनी जाहिर होती है ये बात कि दोस्ती आम है लेकिन है दोस्त दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल।
इनवैल्यूएबल। मुझे लगता है कि काफी ये डिस्कशन हमारी दोस्ती को और कई नए आयाम तक लेकर जाएगी, और इसी
बिल्कुल
तरह से
बिल्कुल,
हम
इसीलिए शायद ये टॉपिक हमारे जहन में आया और ऐसे ही हम रैंडम टॉक के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको हम रिकॉर्ड करें। मुझे बहुत ही बहुत मजा आया ये डिस्कस करके, और एक अलग ही इमोशन है आज मेरा, एक अलग ही एनर्जी है।
तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आज की डिस्कशन से, फ्रेंडशिप का असली मायने क्या है उसका पता लगा, और आगे भी ये दोस्ती परवान चढ़ती रहे, ठीक
दोस्ती भी परवान
है,
चढ़ती रहेंगी और हम इस तरह की रिकॉर्डिंग भी आगे करते रहेंगे।
करते
आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। और मैं जो है
रहेंगे।
आज के टॉक का जो एंड जो है मोहम्मद अली के कोट से मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूंगा। फ्रेंडशिप इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू एक्सप्लेन। इट्स नॉट समथिंग टू लर्न इन स्कूल, बट इफ यू हैवंट लर्न द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, यू रियली हैवंट लर्न एनीथिंग। थैंक यू सो मच।
बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच,
थैंक यू, बाय बाय।
बाय।
लिव बेस्ट स्किल पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर कृपया इसे सब्सक्राइब, शेयर और रिव्यू जरूर करें। आप इसे सभी मुख्य प्लेटफॉर्म्स पर पा सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट्स। हम आशा करते हैं कि विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और यदि आपके पास कोई प्रतिक्रिया, टिप्पणी या प्रश्न है तो आप उन्हें नीचे कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आप हमें सीधा ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@arava.com। हम आपके आभारी रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।